السلام عليكم وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اوکے تھوڑا سا لاسٹ کا کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا, اور پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس کو ٹائپ کر لیجئے, پھر ہم آج کا لیسن انشاءاللہ شروع کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز میں آپ کو کن مینرز کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا استعاذہ پڑھنا ضروری ہے, سورہ کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, اور اس کو پڑھنے کے چار ممکن جائز طریقے ہیں. پڑھتے پڑھتے ایک سورہ کو ختم کر کے دوسری سورہ کو اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو بیچ میں بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہے, اور اس کے پڑھنے کے چار پاسبل طریقے ہیں, مگر ان میں سے جائز صرف تین ہیں. ایک طریقے سے پڑھنا درست نہیں ہے, وہ غیر جائز ہے. پھر ہم لوگوں نے سورۃ التوبہ اور الانفال اور التوبہ کو ملانے کے مختلف طریقے دیکھے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم شروع میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کس طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں, تاکہ جب ہم آگے پڑھیں تو ایک تو ہم ان غلطیوں کے سیکونس کے ساتھ پڑھیں گے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ کون سی غلطی کس سیویئر لیول کی ہے, تاکہ ہم اس کو درست کرنے کی اتنی ہی ممکن کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کے اندر جو غلطیاں کی جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں لحن, لام حانون. لحن, لحن دو طرح کی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے لحن جلی, بلکہ اس کو اس طرح سے بھی پرناؤنس کیا جاتا ہے لحن جلی ظاہر. اور دوسری جو مسٹیک ہے وہ ہے لحن خفی, لحن خفی مستتر. یعنی جلی ظاہر, بہت زیادہ پرومیننٹ قسم کی مسٹیکس. جو لحن جلی ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں, بہت دیر ہوتی ہیں. دوسرا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی ٹائمنگز میں وہ قرآن پاک کے میننگ کو انکانشیسلی چینج کری ہوتی ہیں. یعنی آپ تو انٹینشنلی تو اس چیز کو نہیں تبدیل کرے ہوتے, لیکن چونکہ وہ ایسی غلطی ہے کہ وہ قرآن پاک کے معنی کے اندر چینج لے کر آ رہی ہوتی ہے. لحن خفی جو ہیں وہ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان مسٹیکس کو ایکچولی اسٹوڈنٹ کی ریڈنگ کے اندر جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے استاد کی ایکسپرٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک عام تجوید کا جو ٹیچر ہے وہ لحن خفی کو بہت آرام سے چیک کر سکتا, اور جو لوگ لحن جلی کو بہت آرام سے چیک کر سکتا ہے, لیکن لحن خفی جو ہے وہ ایک استاد کی ایکسپرٹیز ڈیمانڈ کری ہوتی ہیں. لحن جلی جو لوگ یعنی پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں لیکن وہ لحن جلی کو بھی ریکگنائز نہیں کر پاتے, انہیں تھوڑا سا اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب تک ان کی ریکگنیشن لحن جلی میں اسٹرانگ نہیں ہوتی وہ اپنی لسننگ ابلیٹی امپروو کریں. یعنی کسی ایسی کلاس کو جوائن کریں جس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ سناتے ہوں اور استاد ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں, تاکہ ان کے جو آڈیبلٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو کہ کس طرح کی آواز میں کس طرح کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لحن جلی اور خفی کے اندر کون کون سی مسٹیکس آتی ہیں, تو سب سے پہلے ہم لحن جلی کو ڈسکس کرتے ہیں. لحن جلی کے اندر مخرج کی مسٹیکس انکلوڈڈ ہیں. بہت سارے ایسے حروف ہیں جنہیں ہم اردو میں سیم پروناؤنس کرتے ہیں, جیسے कॉफ, काफ, सा, सीन, जाल, जा एंड वो, इन तीन हरूफ को हम उर्दू में एक जैसा प्रोनाउंस करे होते हैं। तो खास तौर पर जब इंडो पाक के लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो उनके लिए इन हरूफ की अदायगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हा हा हो गया, यानी वो इन लेटर्स के अंदर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, और फिर उसको लाइक उर्दू पढ़े होते हैं। उसमें फिर ये होता है कि बहुत दफा ये जो वर्ड्स हैं अगर इनके अंदर इस तरह के मखरज का चेंज हो तो ये मानी के अंदर चेंज ले आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल्ब को अगर कल्ब पढ़ा जाए तो कल्ब का मतलब होता है हार्ट, दिल, जबकि कल्ब इज एन एनिमल, डॉग। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जिनको अगर आप मखरज से दुरुस्त नहीं अदा करें तो उनका मीनिंग भी तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो मखरज की परफेक्शन बहुत जरूरी है। फिर जो बेसिक लेंथ्स होती हैं, यानी कौन से लेटर को वन हरका पढ़ना है और कौन से लेटर को टू हरकात पढ़ना है, जो बड़ी मदूद है वो खूबसूरती के अंदर तो कमी बेशी करती हैं मगर मानी के अंदर नहीं। वन और टू अगर मिक्स हो जाएं तो ये मानी के अंदर भी चेंज करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो दुआ है ना, जब हम सवारी के ऊपर सवार हों तो हमें हुक्म है कि हम पढ़ें सुभान अल्लज़ी सखा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो ये वर्ड आते हैं ना, वो इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अगर इस लमुनक़लिबून को कोई लामुनक़लिबून पढ़े तो ये बिल्कुल मीनिंग इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी लाम को स्ट्रेच करने से मीनिंग जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे लयबलुवन्नकुम, लयबलुवन्नकुम, यहां पर जो लाम फतहा वाला है वो मीनिंग देता है जरूर, बजरूर, यानी एक तो नून तशदीद आ गया, दूसरा लाम फतहा वाला जो है वो एक एम्फेसिस का मीनिंग दे रहा है कि ऐसा काम जरूर होगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हें जरूर आजमाएंगे। लेकिन अगर आप इसको कहते हैं ना लयबलुवन्नकुम, उसका मतलब है कि जरूर, बस जरूर तुम्हें नहीं आजमाया जाएगा। तो इस तरह की जो वन हरका और टू हरकात की मिस्टेक्स हैं ये भी मानी को चेंज कर देती हैं। तो सेकंड लेवल, सेकंड नंबर के ऊपर जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो वन हरका और टू हरकात की हैं, कि जो लेटर वन हरका डिमांड कर रहा है उसे खींच के ना पढ़े, जो टू हरकात डिमांड करता है उसको आप शॉर्ट करके ना पढ़े। ठीक है, तो लहन जली के अंदर ये मिस्टेक्स भी आ जाती हैं। फिर इसी तरह से आम कॉमन फतहा को चेंज कर देना कसरा या दम्मा के साथ, यानी आपके पास लेटर अहादा लिखा है लेकिन आप उसे इहादा पढ़े हैं, या फिर कुलिल्लाहा या कुलिल्लाहू लिखा है और आप उसे पढ़े हैं कुलिल्लाहा, यानी हरका को चेंज कर देना, ये भी लहन जली है। फिर इसी तरह से लेटर इटसेल्फ चेंज कर दिया जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल लेटर लिखा हुआ है बा, उसको नून पढ़ा जाए। बहुत जो बिगिनर्स होते हैं ना, बहुत बिगिनर्स जो कुरान पाक की रीडिंग को जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं, वो बहुत सारे सिमिलर लेटर्स के अंदर मिक्सअप हो रहे होते हैं, बा नून के अंदर मिक्स होते हैं, या अगर वो जीम हा खौ के अंदर, उसकी रिकग्निशन में उनका थोड़ा एक माइंड प्रोसेस चलता है, फिर उनको पता चलता है कि ये कौन सा लेटर है। तो ये जो लेटर की चेंजेस है ये भी लहन जली के अंदर आती हैं, हरकात की चेंजेस लहन जली के अंदर आती हैं। फिर इसी तरह से साकिन को हरका के साथ पढ़ देना और हरका को साकिन, ये भी लहन जली है। जैसे अलहमदु को अलहमदु पढ़ देना, अलहमदु करके पढ़ देना, या जैसे अगर एक वर्ड है वो हरका के साथ है और उसे सुकून दे दिया जाए। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक्स जो हैं ये भी लहन जली है। फिर इसी तरह से तशदीद का जो सिंबल होता है उसका मतलब ये होता है कि आप लेटर को टू टाइम्स पढ़ें। उस लेटर को अगर आप टू टाइम्स पढ़ने की बजाय सिर्फ एक दफा पढ़े हैं तो ये भी लेटर को ओमिट करना है, नहीं लेटर को डिलीट कर रहे हैं आप, ये गलती भी लहनजली के अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हिर्रहमान, अगर आप इसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान हिर्रहमान, तो ये ही रो ज्यादा लग रहा है बनस्बत इसके कि आप उसको तशदीद के साथ बोले। जो उसकी गलती है वो ये कि आप रॉ को टू टाइम्स प्रोनाउंस नहीं कर पड़े कर पा रहे, जिस तरह से वलद्दालीन, इट्स अ वेरी कॉमन एरर कि वलद्दालीन को वलद्दालीन पढ़ा जाए, वो लाम की तशदीद मिस होने से क्या हुआ, लाम आपका एक पूरा लेटर डिलीट हो गया। तो ये जो गलती है ये भी जली के अंदर आती है। अमूमन हम लोग जो थोड़ा बहुत कुरान पाक को रीड करना जानते हैं या एक टाइम से उसको पढ़े होते हैं, हमारे अंदर जो ज्यादा गलती पाई जाती है वो फर्स्ट टू टाइप्स की हैं। मखरज की गलती ज्यादा होती है और मदूद की गलती ज्यादा होती है, जो बेसिक वन और टू हरकात वाली मदूद है। इसलिए इंशाल्लाह जब हम अपनी प्रैक्टिकल तजवीद के अंदर स्टेप करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो हम चीज पढ़ेंगे वो मखारिज ही की परफेक्शन है और उसके बाद तमाम लेंथ्स की परफेक्शन। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये दो ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर हमारी एक कॉन्शियस और एक रेगुलर एफर्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम लहन खफी के अंदर आ जाएं तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत छुपी हुई मिस्टेक्स होती हैं, ज्यादातर तजवीद के ऐसे अहकामात से ताल्लुक रखती हैं जो कि खूबसूरती के लिए हैं, जो लिंग्विस्टिक ब्यूटी है उससे ज्यादा ताल्लुक रखती हैं, मानी पे इतना ज्यादा असर अंदाज नहीं होती। एक कुरान पाक पढ़ने वाले स्टूडेंट को चाहिए कि वो इन गलतियों से भी बचने की हतुल इम्कान कोशिश करे। इन गलतियों को जो लहन खफी है इनको स्कॉलर्स दो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक फर्स्ट लेवल और एक सेकंड लेवल। जो फर्स्ट लेवल होता है वो फिर प्रोमिनेंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा हिडन है और फिर इसमें टीचर की एक्सपर्टीज आ जाती है। अगर आप तजवीद का थोड़ा बहुत भी इल्म रखते हैं तो आप लहन खफी लेवल वन की रिकग्निशन बहुत आराम से कर सकते हैं और लहन खफी लेवल टू की जो रिकग्निशन है उसमें अगेन एक उस्ताद की बहुत ज्यादा ऑडिबिलिटी की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो लहन खफी लेवल वन को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो ये कि आप इदगाम स्किप कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल मई या आलम है और आप इसे पढ़ें मन या आलम, मन या आलम। अब ये ऐसी मिस्टेक है जो कि नून के एक हुक्म की मिस्टेक है, नून को एक बोलने के स्टाइल की मिस्टेक है, तो इसको हम लहन खफी के अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से इख्फा को मिस कर देना, इन कुंतुम, इसको अगर पढ़ा जाए इन कुंतुम, ये मिस कर देना। गुन्ना के टाइम को पूरा ना करना, इन अल्लदीना, इसको पढ़ा जाए इन अल्लदीना, गुना के टाइम की सही अदायगी ना हो। या जो लंबी मद होती है, आपको इंशाल्लाह आगे हम जाके उसके नाम और हर मद की अपनी एक लेंथ है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सबको पता है उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता है, अलिफ के ऊपर अमूमन, वाव के ऊपर, या के ऊपर एक सिंबल का एक सिंबल होता है, मद का सिंबल। तो उस बड़ी मद को अगर शॉर्ट किया जाए, यानी अगर आप फोर हरका पढ़े हैं और आप उसको टू पढ़ देते हैं, जैसे बिनजिल, अगर आप इसको पढ़ दें बीमा उनजिल, तो ये लहन खफी लेवल वन में आ जाएगी। तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये कौन से मिस्टेक्स हैं, ये लहन खफी लेवल वन की मिस्टेक्स हैं। फिर इसी तरह से अगर हम लहन, इसके अंदर एक और चीज आती है लहन खफी लेवल वन के अंदर आता है रिदम को बरकरार ना रखना, यानी आपकी रीडिंग में रिदम नहीं है। रिदम ना होने से क्या मुराद है, इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे कि आप जो लेंथ एक मत के लिए डिसाइड करते हैं, आपको वो अपनी पूरी रीडिंग के अंदर वो लेंथ सेम रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे हम स्टॉप करते हैं, तो मे भी आप लोग फेमिलियर हो कि हम मद करते हैं जो उसको आरद सुकून कहते हैं, मदुल आरद सुकून कहते हैं। उसमें आपके पास 2, 4, 6 की चॉइस होती है। अगर आपने फर्स्ट हैंड उसको 2 से स्टार्ट लिया, तो यू शुड हैव टू कीप इट 2 इन योर 1 सिटिंग रीडिंग, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने 4 से स्टार्ट किया तो आप उसको 4 रखेंगे, अगर आपने 6 से स्टार्ट लिया तो आप उसे 6 रखेंगे, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये होते रिदमैटिक रीडिंग, यानी आपकी जो रीडिंग है वो एक रिदम के साथ चल रही है। अगर आप उसे कभी 2 करे हैं, कभी 4 करे हैं, कभी 6 करे हैं, तो उसके अंदर से जो एक एक्सट्रीम ब्यूटी है ना, वो निकल जाती है। तो ये भी गलती। इदगाम, गुन्ना, मद एंड फोर्थ रिपीट कर दें जी। इदगाम का स्किप करना, इख्फा का स्किप करना, गुन्ना की टाइमिंग्स का ध्यान ना रखना, बड़ी मद की लेंथ का ख्याल ना रखना, और जो लास्ट में हमने डिस्कस किया कि आपकी रीडिंग के अंदर रिदम का ना होना, यानी अगर आप एक मत को 2 कर रहे हैं तो आप उसको पूरी सिटिंग के अंदर 2 करें, और आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसे मुसलसल चेंज कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं, कभी 4 कर रहे हैं, कभी 6 कर रहे हैं, तो आपकी रीडिंग के अंदर रिदम नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद जो आपके पास आ जाता है लहन खफी लेवल 2, ये बहुत ही ज्यादा छुपी हुई मिस्टेक्स होती हैं। ये ज्यादातर सफात से ताल्लुक रखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्ड पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब जो लेटर हा है उसके अंदर हवा की आवाज आनी चाहिए, यानी हम्स होनी चाहिए, एयर ब्लो होनी चाहिए, रनिंग ऑफ एयर होनी चाहिए। अगर आप उसको यूं पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमान और आप उसमें एयर ब्लो नहीं करते, तो ये जो हा का एरर है ये लहन खफी लेवल 2 में आ जाता है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमान को बिस्मिल्लाहिर्रहमान यूं पढ़ना, सही, बगैर हम्स के हा को अदा करना। फिर जितनी भी सफात की मिस्टेक है वो सब जो है वो खफी के अंदर ही आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ के अंदर एक्सेसिव ट्रिलिंग कर दी जाए, बहुत ज्यादा आप रॉ को रोल करें हैं, ये गलती भी लहन खफी लेवल 2 में आती है। या लेटर को इनफ हैवी ना करना, जैसे अस्सोबीरीन को अस्सोबीरीन, सा सा, अब ये हैवी तो है पर इट्स नॉट इनफ हैवी, ठीक है, उस तरह से पढ़ना। तो जो सफात के एरर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, प्लस इत्माम हरका, इत्माम हरका के जो एरर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। इत्माम हरका क्या होता है तजवीद में, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी रीडिंग को बहुत ज्यादा ब्यूटी देता है। फतहा की सांग होती है बिल्कुल स्ट्रेट आ करके, कसरा की सांग होती है ई करके, और दम्मा की सांग होती है ऊ करके, ठीक है। तो अगर आप दम्मा को पढ़ते हैं, लेट्स से अलैकुम वर्ड है और आप उसे पढ़ते हैं अलैकुम कुम करके, तो ये साउंड जो है कुम इज नॉट अ परफेक्ट साउंड ऑफ दम्मा। अलैकु पूरा सर्कल, ऊ साउंड, फिर पुल बैक योर लिप्स और हिट द मीम अलैकुम। इसी तरह से अलैहिम, तो अलैहिम पढ़ना, हे करके पढ़ना, ये जो है ये इस लहन खफी लेवल 2 में आ जाती है। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि हम ना, जब ये आप मिस्टेक सुन रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मजहूल सा स्टाइल है, एटलीस्ट हम ऐसा नहीं करते ना, ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉमन एरर है। एक मजहूल स्टाइल होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, वो वाला स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नहीं करते, लेकिन ये जो स्टाइल होता है ना, ये आपको पता ही नहीं चलता आपकी रीडिंग के अंदर ऐड है, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की, अगर मैं ये कहूँ 99.9% स्टूडेंट्स की रीडिंग के अंदर ये नेचुरली ऐड होता है, तो ये चीज दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि हम उर्दू में दम्मा फतहा कसरा वाले जो साउंड्स हैं, हम उर्दू में भी यही सिंबल्स बोलते हैं, सिर्फ हम राइटिंग में लगाते नहीं हैं। हमारी जो ये सिंबल्स हैं ये कम हैं, मतलब हम इनको पूरी तरह से परफेक्ट नहीं करते। अरबिक लैंग्वेज में इनको बहुत परफेक्ट करने की जरूरत होती है, जैसे या अय्युहल्लदीना, तो इसको बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं या अय्युहल यो अय्युहल्लदीना, यानी दो जगह के ऊपर आर आर आ रहा है, या अयो और हल्लादीना, हल्ला भी नहीं और अयो भी नहीं, या अयु हल्ला लदीना, या अयु हल्लादीना, यानी ये जो हरका का इतमाम है अगर ये इनकम्प्लीट हो रहा है तो ये लहन खफी लेवल टू में आता है। ठीक है, तो ये तो हमारी मिस्टेक्स थी जो कुरान पाक के दौरान में, कुरान पाक की रीडिंग के दौरान हम करते हैं। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट टू चैप्टर्स जो हैं वो लहन जली के डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमने लहन खफी लेवल वन देखा उसको हमने थर्ड नंबर पे रखा हुआ है, यानी नून साकिन के तमाम रूल्स, मीम साकिन के गुना के रैंक्स, ये सब चीजें वहां पे डिस्कस होंगी। और फिर इंशाल्लाह आखिर में जो थर्ड चैप्टर का लास्ट हमारा पोर्शन होगा वो यही इतमाम हरका से होगा, यानी लहन खफी लेवल टू के साथ हम उसको खत्म करेंगे बुक को, और फिर इंशाल्लाह सफात वगैरह। तो यानी इस सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे। फिर आप देखेंगे ऐसा हो सकता है कि हमें से बहुत सारे लोगों के जहन में मुख्तलिफ तरह की बातें आ रही हों। एक तो ये कि उफ हम तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं रीडिंग के दौरान, और क्या अब हमें क्या एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये वाला चैप्टर ये टॉपिक पढ़ते हैं तो फिर मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हम अपनी रीडिंग स्टॉप कर दें और फिर हम अच्छे से तजवीद को सीखें और फिर कुरान पाक की रीडिंग करें। तो इसके अंदर आपने ना कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि कुरान पाक के साथ आपका एक ताल्लुक होना चाहिए, वो अपनी जगह के ऊपर है, वो जैसा भी है उस ताल्लुक को हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। चाहे आप किसी हायर लेवल पर भी चले जाते हैं ना, बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं, आपकी परसेप्शन, आपकी कॉन्शियसनेस जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, मीनिंग के ऊपर ध्यान, आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर, अगर आप ऐसा लेवल भी पढ़े हैं ना तो भी आपको उससे कुरान पाक से मजीद बेहतर ताल्लुक करने की जरूरत होती है। तो जो भी आपका ताल्लुक है कुरान पाक के साथ वो रहना भी चाहिए और हमेशा उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत भी होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि अब आपका ताल्लुक परफेक्ट हो गया और मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आई थिंक दैट्स अ डाउनफॉल। तो उसमें फिर ये है कि जो ताल्लुक है, जो आपका रीडिंग का डेली रूटीन है, आप उसको कायम रखें। हाँ, आप अपनी तजवीद के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आप अपनी रीडिंग को मजीद इम्प्रूव करना शुरू कर दें, आप अपने कुरान पाक के साथ बेहतर करना शुरू कर दें, टाइम रिड्यूस करके नहीं, क्वालिटी इंप्रूव करके। ठीक है, टाइम जो आप उसको दे रहे हैं आप उतना ही दें, आप ज्यादा कर सकते हैं आप ज्यादा करें, मगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करके तो अपने रिलेशन को कुरान पाक के साथ बेहतर करें। फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं, नहीं हम तो ये नहीं सीख सकते, हमारी एज इतनी हो गई है, हमारी टंग एक जगह के ऊपर फिक्स हो गई है, दैट्स टू हार्ड, हम नहीं कर सकते ना ये काम। ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता है। इसमें फिर ये है कि ये जो थॉट है ना, इट्स जस्ट फ्रॉम शैतान। ठीक है, और जैसे आज सुबह ही मेरी किसी खातून से बात हो रही थी तो वो मुझे कहती है कि डू यू हैव एनी होप फॉर मी कि क्या मैं कुरान को कभी दुरुस्त पढ़ सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ डजंट मैटर, अल्लाह ताला ने कयामत के दिन देखना ही नहीं है कि आप कुरान कैसा पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी कोशिश इस कुरान के साथ एक रिलेशन इंप्रूव करने की कैसी थी। तो कोशिश के ऊपर रिवॉर्ड है, आपकी अचीवमेंट के ऊपर नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये देखें कि तजवीद के लिए स्कॉलर्स की क्या राय पाई जाती है ना, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्कॉलर्स इस चीज के ऊपर एग्री हैं कि जो तजवीद का रीडिंग का नॉलेज है वो फर्द आइन है। ठीक है, वो फर्द आइन है। आई थिंक थोड़ा बहुत हमने इसको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ये जो है ये फर्द आइन कैसे है, हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर ये फर्ज है कि वो कुरान पाक की रीडिंग को परफेक्ट करने की कोशिश करें। याद रखें, परफेक्ट करना ना हमारे हाथ में है और ना हमसे डिमांड किया गया। आप देख सकते हैं बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनकी जबान के अंदर ऐसी लुखनत थी कि वो उस एक वर्ड को या लेटर को सही प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, इवन दो दे आर ट्राइंग। फिर आप देखें कि हमें हदीस में भी ये चीज मिलती है ना कि जो अटक अटक के पढ़ता है, इट मीन्स के देर वॉज सम पर्सन कि जो अटक अटक के पढ़ा था। तो जो इंसान कोशिश के बावजूद उसको पूरी अच्छे तरीके के साथ नहीं अदा कर सकता, उसको डबल रिवॉर्ड मिलता है। तो ये ऐसा है कि जो कोशिश है वो फरदाइन है, कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कुरान पाक को की रीडिंग को इम्प्रूव करने की और एक हायर लेवल तक पहुंचने की। और जो इसका रूल्स का नॉलेज है वो फर्द किफाया है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कम्युनिटी में से कुछ लोग इसको कर लेते हैं तो ये सबकी तरफ से अदा हो जाता है। फिर आप देखें कि जो हमारे ऊपर फर्द आइन है और किफाया, अगर हम इसको मिक्स कर लेते हैं, कि जो हमारे ऊपर हमारी ड्यूटी है, जो ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आती है, इसमें से अब हर इंसान एक लेवल का नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग को अचीव कर लेते हैं, यानी आप बैठते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना फोनिक्स को पिक करने में बहुत क्विक होते हैं, वो जरा सरा कहीं से कोई रिदमेटिक चीज सुनते हैं उसको उसी रिदम में बोलना शुरू कर देते हैं, कुरान को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, यानी उनकी जो ट्यून होती है उसको बहुत परफेक्शन के साथ फॉलो करते हैं, यानी उनकी ये जो ऑडिबिलिटी होती है और चीजों को कैच करने की जो एक एबिलिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो बहुत सारे लोग उस लेवल को पहुंच जाते हैं, ये एक अच्छी रीडिंग करना जो है वो सीख लेते हैं। जो लोग कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ना अचीव कर लेते हैं और इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और उन्हें सिखाया गया अल्लाह ताला की तरफ से, उनका जो लेवल है वो अहदीस के मुताबिक है कि सफवतुल मला, कि उनको फरिश्तों की और मुकर्रबीन फरिश्तों की सफ में रखा जाएगा। फिर अल्लाह ताला बाज जगह के ऊपर, जैसे हमें अहदीस में मिलता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अहलुल कुरान को अहलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला अपनी फैमिली करार देते हैं कि मेरी फैमिली है जो अहलुल कुरान है। याद रखें कि इसमें हमेशा वो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि सिर्फ हलक से कुरान पढ़ना हमें इस लेवल तक नहीं लेके जा सकता, इसके लिए हमें कुरान पाक के साथ अपने हर तरह के रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने की जरूरत होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर हम अच्छा कुरान पढ़ रहे होते हैं तो फौरन हमारे माइंड में आता है मे बी हम तो सफ़वतुल मलाह में हैं या हम अहलुल्लाह हैं, तो नहीं, कुरान पाक के साथ रिश्ता स्ट्रांग करना हमेशा हमारी एक जरूरत है। फिर आप देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एफर्ट करते हैं और बहुत स्ट्रांग एफर्ट करते हैं, मुसलसल एफर्ट करते हैं, मगर उनकी अचीवमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी के कुछ खास लोगों की हो रही होती है। अब वो परेशान होते हैं कि हमसे तो ठीक नहीं हो रहा, हम आइन के पीछे पड़े हुए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, यानी डिप्रेस हो रहे होते हैं कि ये साउंड क्यों परफेक्ट नहीं हो रही। तो आप देखें कि वो लोग जो कुराने पाक को पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं मगर उसकी परफेक्ट रीडिंग को अचीव नहीं कर पाते, उनके लिए दोहरा अजर है, उनके लिए डबल रिवॉर्ड है। आप देखें कि जैसे हर एक आम इंसान को कुराने पाक के एक हर्फ पढ़ने के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, तो ये लोग जब कुराने पाक पढ़ते हैं, जो अटक अटक के पढ़ते हैं और दिल में तंगी महसूस करते हैं कि हम बेहतर तरीके से कुरान नहीं पढ़ पा रहे, तो इनके लिए क्या है, उस तंगी के ऊपर, वो जो दिल के अंदर आ रही है कि एक इंसान है वो बहुत खूबसूरत पढ़ रहा है और मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहा, तो उस तंगी के ऊपर क्या होता है, उन्हें 10 और नेकियां मिल जाती हैं। सो इट्स अ विन विन गेम कि आप वहां से चाहे आगे चले जाएं चाहे यहां से आगे चले जाएं। ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि अल्लाह ताला हमारी इंटेंशंस को देखते हैं, हमारी अचीवमेंट्स को नहीं। अल्लाह ताला हम में से कयामत के दिन किसी से नहीं पूछेंगे हाउ मेनी इजाजत डू यू हैव, ठीक है? वो आपकी एफर्ट देखेंगे कि कुरान पाक के साथ आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता कैसा था। फिर आप देखें कि इसमें जो लोग, ये दोनों कैटेगरीज तो पास हैं, ठीक है, वो लोग जो के गुनाह को उठाते हैं, यानी जो इस्म उठाते हैं, गुनाह लेते हैं, वो कौन से लोग होते हैं? क्योंकि हमें ये भी कोशिश करनी है लगन में ना आए। वो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो के में एक प्रीसेट थॉट के साथ होते हैं कि हम कुरान पाक को परफेक्ट पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, उनके माइंड में ये चीज होती है कि हम परफेक्ट नहीं पढ़ सकते, और फिर इस सोच के साथ वो एफर्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो अगर ये सोच है तो इंसान गुनाह उठाएगा। दूसरा, वो लोग होते हैं जो कि कुरान पाक को बहुत अच्छा पढ़ना सीखते हैं, उन्हें रूल्स आते हैं, तजवीद आती है, सब कुछ आता है, मगर लेजीनेस की वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बाज़ूकात ऐसा होता है ना, दिल नहीं चाहता, इंसान मुंह के अंदर ही उस चीज को बोल रहा होता है, या जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ूकात तरावी वगैरह में इतनी ज्यादा स्पीडी रीडिंग होती है कि आप लेटर्स को भी चेक नहीं कर पाते, कि लेटर्स तो बहुत दूर की बात, आप वर्ड्स भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्या बोला जा रहा है। तो लेजीनेस की वजह से या इस नॉलेज की अहमियत को अच्छी तरह ना समझने की वजह से जो लोग कुरान पाक की तिलावत को बेहतर तरीके से नहीं करते, ये लोग गुनाह उठाते हैं। ठीक है, आप जब तक एफर्ट करते हैं, आप कोशिश के अंदर मौजूद हैं, आप अचीवर्स हैं या आप हायर अचीवर्स हैं। ठीक है, मैं उन लोगों को जो कि अच्छा नहीं पढ़ सकते, मैं उनको कभी भी लूजर्स नहीं कहूंगी, दे आर हायर अचीवर्स। ठीक है, तो क्योंकि उनके लिए डबल रिवॉर्ड है, तो आप अचीवर्स हैं या हायर अचीवर्स हैं, यू आर इन अ विन गेम। यहां पर जो है वो आपके पास यानी वही बात है कि आपके पास गेम हारने वाली कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, विन विन गेम है। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारा ईमान का जो एक लेवल है या एक अल्लाह ताला से मुलाकात की जो थॉट है उसमें तो कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो इस इल्म से रिलेटेड कि इसका हुक्म कैसे है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि तजवीद का इल्म सीखना ये फर्द आइन है। ठीक है, और इसके रूल्स को सीखना फर्द किफाया है। अब हम इंशाल्लाह आगे जो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो है मखारिज। मखरज का वर्ड खरोजा से है, निकलना, और मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। ठीक है, निकलना और निकलने की जगह। तो तजवीद में आप मखरज किसे कहते हैं? लेटर्स के निकलने की जगह को, जहां से एक मखसूस लेटर की मखसूस आवाज निकलती है, उसे हम मखरज कहते हैं। एक और बात जो कि बहुत अहम है और आप सबको पता होनी चाहिए, वो ये कि जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो हमारे पास तजवीद नाम का कोई एसेच नॉलेज मौजूद नहीं था। लेटर्स को इस तरह या मखरज की प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेशन और ये सारी चीजें हमारे पास उस टाइम में नहीं थी। आज जिन लोगों के ऊपर नाजिल हो रहा था वो अरब बोलने, उसके अंदर उसके तमाम आवाज। ओके, तो जो अरब्स थे, क्योंकि कुरान पाक अरब्स के ऊपर नाजिल हो रहा था, तो अरब्स जो हैं वो जुबान के अंदर बहुत ज्यादा माहिर थे। तो उसमें फिर ये था कि चूंकि वो लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा माहिर थे, तो उन्हें लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन या मखारिज सिखाने की या इदगाम के रूल सिखाने की जरूरत नहीं थी। वो उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ अदा भी कर सकते थे और उसके उससे अच्छी तरह से वाकिफ भी थे। लेकिन जो 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 कुरान का नॉलेज है वो नॉन अरब्स के अंदर गया, तो उसमें फिर ये हुआ कि इस चीज की जरूरत महसूस की गई कि लोगों को लेटर्स की अदायगी सिखाई जाए, कि उनको पता नहीं चलता था कि हम किस लेटर को किस तरीके के साथ अदा करें। तो लेटर्स की अदायगी को सिखाना, यानी ये फिर लेटर आपके पास तजवीद का एक नॉलेज था जो कि आपके पास आया। यही वजह है कि आपको इसके अंदर ना स्कॉलर्स के काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलते हैं। कुछ स्कॉलर्स की राय के मुताबिक जो मखारिज हैं उनका नंबर डिफरेंट है, और यानी ये जो आपको डिफरेंसेस मिलते हैं इन इनमें से मेजॉरिटी डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, यानी रूल से ताल्लुक रखते हैं। आवाज के अंदर कोई खास डिफरेंस हमें नहीं मिलता कि लेटर की अदायगी किस तरह से होनी चाहिए, उसमें हमें ऐसे सच इख्तलाफ नहीं मिलते। हाँ, बाज स्कॉलर समझते हैं कि ये आवाज यहां से आती है और बाज समझते हैं कि ये यहां से आती है। हम इंशाल्लाह ज्यादातर जो रूल्स वगैरह हैं वो इमाम इब्न अल जज़री के फॉलो करेंगे, और इसकी एक रीजन है, और वो ये कि जो इमाम इब्न अल जज़री का काम है तजवीद के अंदर वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, अल्लाह ताला की तरफ से वो आज तक जिंदा भी रहा, फिर वो ऑथेंटिक भी है। कि जैसे आप जानते हैं जी, जैसे आप लोग जानते हैं कि हदीस के अंदर जो सबसे अहम काम है वो इमाम बुखारी का था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो इमाम इब्न अल जज़री की किताबें और जो उनकी राइटिंग्स हमें तजवीद के लिए मिलती हैं, खासतौर पर उनकी जो तैयबत नशर है, उसको वो लेवल्स, उनके काम को वो लेवल हासिल है जो हदीस की दुनिया में इमाम बुखारी के काम को हासिल है। यानी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक था, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ था, और बहुत ज्यादा स्कूल्स के अंदर इमाम इब्न अल जज़री की मंजूमा जो है पोएमिक फॉर्म में जो उनके रूल्स ट्रांसफर हुए हुए हैं उन्हीं के यानी उन्हीं का काम वो याद करवाए बगैर आपको इजाजत भी पास नहीं होती। तो इसलिए इनका काम, यानी इनके जो आप ये कह सकते हैं जो इनके ओपिनियंस हैं, हम उनको जरूर बीच में देखेंगे। तो इमाम इब्न अल जज़री के मुताबिक जो मखारिज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 17 है, ठीक है। यानी मुंह, हलक और जहां जहां से आवाज आती है, 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आपको हरूफ की अदायगी मिलती है, ठीक है। फिर मखारिज को अगर हम दो मेजर एरियाज में डिवाइड करें, यानी मेजर जो ग्रुप्स हैं, अगर हम इनके मेजर ग्रुप्स बनाते हैं, तो हमारे पास मखारिज की दो मेन टाइप्स आती हैं। एक को हम कहते हैं मखरजुल मुहक्कक, और दूसरे को हम कहते हैं मखरजुल मुकद्दर। मखरज मुहक्कक वो मखारिज होते हैं जो कि बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, और आप जैसे ही लेटर को बोलते हैं आप उसे फील भी कर सकते हैं कि ये लेटर किस पॉइंट से निकल रहा है, और आप उसे डिटरमिन भी कर सकते हैं। आपको फील होता है कहीं टंग हिट हुई है, लिप्स हिट हुए हैं, यानी आप उसका हिट महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बा है, अब तो जब आप बा बोलते हैं तो आपको फील होता है कि आपके दोनों लिप्स आपस में स्ट्राइक किए। अम नी बोलते हुए भी यही फील होता है, अक बोलते हुए भी आपको फील होता है कि ये जो है ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग से आ रहा है, ठीक है। यानी ये क्लियर डिस्टिंक्ट मखारिज हैं जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से आ रहे होते हैं। दूसरा जो हमारे पास एरिया है वो है मखरजुल मुकद्दर। जो मखरजुल मुकद्दर है वो मखारिज किसी स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं आते, ठीक है, किसी खास जगह से नहीं आते, बल्कि अगर हम ये कहें कि वो लेटर्स एक मखसूस जगह से आने की बजाय एक पूरा एरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी वो किसी एक खास जगह से नहीं आते बल्कि एक काफी बड़ा सारा एरिया जो है वो उन लेटर की अदायगी के अंदर इन्वॉल्व होता है। इनको हम कहते हैं मखरजुल मुकद्दर, जो कि नॉन डिटरमिन मखारिज होते हैं, ठीक है, अनस्पेसिफिक आप कह सकते हैं। फिर जो इमाम इब्नुल जज़री के 17 पॉइंट्स थे, अगर हम उन्हें पार्ट्स में देखें तो हमारे पास 5 मेजर पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, अभी आपको काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस मिल रही होंगी। एक तो दो कॉमन आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, मुहक्कक और मुकद्दर। इंशाल्लाह आगे चल के जब हम मखारिज को देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डिटरमिन है, यानी आपको क्लियरली पता चलता है कि ये मखरज इस पॉइंट से आ रहा है, किसको आप चेक नहीं कर पाते कि ये कहां से आ रहा है। ठीक है, फिर जो इमाम इब्न जजरी के 17 पॉइंट्स थे उनको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास 5 मेजर पार्ट्स आते हैं। पार्ट्स कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 हलक। ठीक है, हलक है। अब आप जानते हैं कि एक हिस्सा है, इसके अंदर कुछ मखारज हैं। फिर लसान है, टंग, उसके अंदर कुछ मखारज हैं। और फिर लिप्स हैं, जिसके अंदर कुछ मखारज है। तो ये मेजर पार्ट हो गया जिसके अंदर अभी हमारे पास सब मखारज आएंगे और हम उन सबको टोटल 17 करेंगे इमाम इब्न जजरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन से 3 हिस्से आपको पता चले? हलक, लिसान और लिप्स, जिन्हें हम कहते हैं शफतान। ये तीनों एरियाज हमारे मुहक्कक मखारिज हैं। यानी हलक से जो आवाज आती है आपको पता चलता है ये हलक से आ रही है, हलक के इस खास हिस्से से आ रही है। लिसान, टंग के इन्वॉल्वमेंट से जो आवाज आती है वो भी आपको क्लियरली पता चलता है कि ये टंग से आवाज आ रही है। ठीक है, शफतान जो लिप्स से आती है वो भी आपको क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है कि ये आवाज लिप्स से आ रही है। सही, तो ये 3 जो एरियाज हैं आपके पास, 3 पार्ट्स, इनके अंदर बहुत सारे मखारिज हैं, ये 3 पार्ट्स जो हैं ये हमारे पास मखरज मुहक्कक हैं, डिस्टिंक्ट क्लियर स्पेसिफिक मखारिज हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 और मेजर हिस्से हैं जिन्हें, एक को हम कहते हैं अलजौफ। अलजौफ किसे कहते हैं? स्पेस को, स्पेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, अलजौफ। और दूसरा है अल खैशूम। जो अलजौफ है ना, उसके उसके ऊपर स्कॉलर्स का एग्रीमेंट है कि ये मुकद्दर मखरज है, यानी आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअली इसमें से इंशाल्लाह आगे भी हम मद लेटर्स की आवाजें आती हैं। आप जैसे मद लेटर्स पढ़ते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आ मैनू, तो जो आ लंबा हो रहा है आपको नहीं महसूस होता कि ये आवाज जो आ करके आ रही है ये कहां से आ रही है, या नू ये जो ऊ की आवाज है ये कहां से आ रही है। तो ये पूरा एरिया एक इन्वॉल्व है इस आवाज की अदायगी में, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। ये होता है अलजौफ। इस पे स्कॉलर्स का एग्रीमेंट है कि ये मखरज मुकद्दर है। दूसरा जो हिस्सा है वो है अलखैशूम। अलखैशूम, खैशूम हम कहते हैं नेजल कैविटी को। और आप जानते हैं जैसे हम गुन्ना की जो आवाज है वो नेजल कैविटी से निकालते हैं, इन, ये जो इन नून की आवाज आ रही है ना या मी ना, ये भी हमारी नेजल कैविटी की इन्वॉल्वमेंट से आती है। इसमें स्कॉलर्स का इख्तलाफ है। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मुहक्कक है और द अदर स्कूल ऑफ थॉट वो कहते हैं कि ये मुकद्दर है। जो कहते हैं कि ये मुहक्कक है वो कहते हैं क्योंकि नेजल कैविटी से आ रहा है तो ये स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी स्पेसिफिक पार्ट हो गया ना, क्योंकि नेजल कैविटी से आवाज आ रही है इसलिए ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया, तो ये मुहक्कक है। और जो कहते हैं मुकद्दर है, वो क्यों कहते हैं मुकद्दर है? क्योंकि पूरी नेजल कैविटी इन्वॉल्व है, कोई एक नेजल कैविटी का एक स्पेसिफिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पूरी नेजल कैविटी इन्वॉल्व है इसके अंदर, यानी कोई एक हिस्सा नहीं कि आपके आउटसाइड नॉस्ट्रिल्स या उसके करीब या जो इनसाइड ओपनिंग है उसके करीब वाला हिस्सा नहीं, पूरा नाक आपका और पूरी जो नेजल कैविटी है वो इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए इसमें बास स्कॉलर्स की राय है कि ये मुकद्दर है और बास की राय है कि ये मुहक्कक है। हम इंशाल्लाह इसको एज मुकद्दर पढ़ेंगे। ठीक है, दो मुकद्दर मखारिज हमारे पास आ गए, एक खैशूम और दूसरा अलजौफ। सही। अब हम इंशाल्लाह थोड़ी बहुत रीडिंग कर लेते हैं। आपने आई थिंक सबने नहीं सुनाया था लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक किया था, मैं चाहती हूँ आज थोड़ी सी हम मजीद उसकी ड्रिल करें। डिफरेंट सूरास को इकट्ठा पढ़ना, और अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो उसको इकट्ठा पढ़ना। तो आप लोग प्लीज अपने अपने हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं सुनाया था, या अगर सुनाया था और वो दोबारा सुनाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह कुछ सूरज को ना उस हिसाब से देख लेते हैं इंशाल्लाह। जी सफवत अल मलाह में कौन आना चाह रहा है? ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम करते हैं आई थिंक आखिर की तो कुछ सूरज हमने काफी सारी कर ली थी। हम इंशाल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सूरतुश शर्ह को शुरू करें, यानी इसकी इब्तदा करें वस्लुल कुल से। ठीक है, मैं माइक छोड़ती हूँ। जी फर्स्ट सिस्टर, आप सूरतुश शर्ह की इब्तदा करें वस्लुल कुल से। जी
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
आमीन वैयाकुम। जी आपका तरीका बिल्कुल दुरुस्त था माशाल्लाह। थोड़ा सा हम दो के ऊपर ना अभी आपने प्रैक्टिस रखनी है। मीना शई दो नी रोजी मी, यानी इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो हिट है ना आपका वो जरा थोड़ा सा और स्ट्रांग हो, और फिर जब हम वर्ड पढ़ेंगे नश रो हैवी होगा, हा आपका फिर लाइट हो जाएगा। नश रोह लक सो सोद रोक, ठीक है। यहाँ पर भी इस वर्ड में भी आप देखें सौद हैवी है, दाल लाइट है, और रॉ हैवी है एंड काफ लाइट है, तो इसमें आपने हैवी लाइट का ख्याल रखना है। सौद रोक, ठीक है। सही, जज़ाकअल्लाह खैरा। जी नेक्स्ट सिस्टर, आप सूरत दुहा पढ़िए, और आपने पढ़ना है वसलुल इस्ताआज़ा माल बसमला। जी ये वसलुल कुल था, ठीक है। वसलुल इस्तआज़ा आपने पढ़ना है माल बसमला सूरतुल दुहा।
जी मेरी आवाज आ रही है? जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
जी जजाक अल्लाह खैर। जब हम ना मिन शैतान रजीम करेंगे तो फिर आपने उसमें ना ब्रेक नहीं लेना, यानी कंटिन्यूअसली फिर आपने करना है। अऊजु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर आप पॉज करें अच्छा सा सांस के लिए। वद्दुहा, और बहुत के ऊपर प्रैक्टिस करें। वद्दु वद्दुहा, ठीक है, हैवी भी और होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम इसका आगे मखरज भी देखेंगे। पोस्टीरियर साइड से आपका आना चाहिए, पीछे वाला जबान का हिस्सा इसमें आपका इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, सही, जज़ाकअल्लाह खैरा। जी नेक्स्ट सिस्टर, आप पढ़िए सूरतुल जलजला और सूरतुल आदियात, ठीक है। आपने इन दोनों सूरत को पढ़ना है वस्लुल कुल से, ठीक है। आपने कहाँ से स्टार्ट लेना? बिल्कुल सूरतुल जलजला की लास्ट आया से, और फिर बसमल्ला पढ़ के, और नेक्स्ट एक आया आपने सूरतुल आदियात की पढ़नी है वस्लुल कुल के साथ।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی وصل الكل سورة العادیات، سوری، سورة الزلزلہ اور عادیات کے ساتھ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ شره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दैट्स गुड। जी इसमें कुछ एक दो चीजें देखिए। वमन यामल, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें ना आपका जो गुन्ना का टाइम है थोड़ा सा और होना चाहिए। फिर रॉ को हैवी करेंगे, शर्रो, यहाँ पर भी शर्रो बिस्मिल्लाह, ये जो यरोहू है यहाँ पर मद आ रही है, मद सला है, तो इसको आपने पूरा करना है। यरोहू टू हरकत पूरा करके फिर आप आगे चलेंगे। फिर आगे देखिए, वल्लादियाति बॉब बो बॉब हा, दो अधे भी, और फिर आगे आपका बा लाइट होगा। जी जजाकल्लाह खैरा। ओके नेक्स्ट सिस्टर, आप सूरतुल हुमजा को सूरतुल फील के साथ पढ़िए वस्लुल कुल करके। लास्ट आया से शुरू कीजिए हुमजा की, और सूरतुल फील की जस्ट वन आया तक वस्लुल कुल करिए।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी। वसल कॉल करना है, वसल कॉल करना है जी। अच्छा, सूरे हुमजा वाला सर से, वाला सर के से। वतवासौ बिस्सब्र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
جی جزاک اللہ خیرا. ایکچولی ہومزا اور فیل کو کرنا تھا. اور پھر آپ نا مڈل سے نہیں سٹارٹ لے سکتے, پھر آپ اگر آپ جیسے آپ نے اثر کیا تو پھر آپ الذین آمنو سے ہی پڑھیں گے, اور وتواصوا بالصبر بسم اللہ, یہاں آپ نا بالصبری کہہ کے سانس نہیں لے سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر آپ نے اس میم کی کسرہ کو بھی ادا کرنا ہے, یعنی آپ کسرہ کو ادا کیے بغیر وصل نہیں کر سکتے. اگر آپ الرحیم پڑھے ہیں تو وہ پھر کنٹینیویشن نہیں ہوئی نا, آپ کی جو کسرہ ہے وہ مس ہو گئی. تو جی وصل کرتے ہوئے ان باتوں کا جو ہے دھیان رکھنا ضروری ہے. جی نیکسٹ سسٹر آپ کیجیے, ہومازا اینڈ فیل لاسٹ آیا سے ہومازا کی شروع کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. آمین ویاکم. اٹ واز گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے آپ کا جو طریقہ تھا وہ بالکل صحیح تھا, تھوڑا سا آئین جو ہے نا اس کو فی آمدی ممددتیم, اس میں ہم آئین کو بالکل مکھ کھول کے بولیں گے, ٹھیک ہے, آ ہیوی نہیں ہونا چاہیے. آمدیم پھر نیچے نا علم تر, یہاں پہ بھی تھوڑا سا آئین کا ٹچ آ رہا تھا, اس کو پیور حمزہ أعلم كيف فعل فعل, يعني فع هذه نہیں ہونا چاہیے. پھر ر ربك, ر هذه ہوگا, ربك نہیں پڑھنا. بی اس ح الفیل, ح کو بھی اسٹرانگ کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں, نیکسٹ ویک ہم مخارج کو آگے کنٹینیو بھی کریں گے, اور پھر ہم انشاءاللہ لیٹرز کی بھی پریکٹس کریں گے. اور کوشش کیجئے کہ آپ لوگ نا انشاءاللہ چونکہ ہم نیکسٹ ویک حروف کی پریکٹس سے شروع کریں گے, تو آپ نا سیکوینس سے جو آپ لوگ جیسے رجسٹرڈ ہیں 001 اور 2 اور 3 سب ہینڈ ریز کر کے تو لیٹرز کو سنائیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ کے مخارج جو ہیں وہ اچھے ہوں انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.